रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप हैं मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास कानूनी जानकारी से जुड़ी हुई। हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है कानूनी सलाह, और ऐसे ही सलाहकार हमारे बीच आज एक बार फिर से मौजूद हैं, एडवोकेट मोहित भंडारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से।
थैंक यू।
तो मोहित जी, हम हर बार बात करते हैं किसी ना किसी ऐसे लीगल टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी एक आम व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए, और वसीयत की नसीहत हमने पहले भी दी है और आज भी हम इसी टॉपिक पर ही बात करने वाले हैं। वसीयत के बारे में नसीहत देने वाले हैं आप आज फिर से।
ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही करते हैं
जी। तो मोहित जी, सबसे पहला यही सवाल जानना चाहूंगी आपसे, वसीयत के बारे में बात कर रहे हैं, विल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि विल 50 या 60 की उम्र के बाद ही लोग बनाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके जीवन का अंत थोड़ा नजदीक आ रहा है। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है जब बहुत छोटी उम्र में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है और वहां पर वसीयत का कोई चांस ही नहीं है, कोई विल नहीं बनाई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पता है कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है, उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत खराब है और मृत्यु के बहुत करीब है, वो तो क्या वो एक प्लेन पेज पे जो भी कुछ लिखेगा अपनी प्रॉपर्टी के बारे में वो भी वैलिड होगा?
बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। अनफॉर्चुनेटली किसी भी एज ग्रुप में किसी भी मेल या फीमेल का अगर ऐसे एक्सीडेंट होता है और उस समय वो अकेले हैं एक्सीडेंट के समय में और उन्हें ये मालूम है कि मैं अकेली डेजर्टेड जगह पे हूँ और मेरे को इमीडिएटली हेल्प भी नहीं मिलेगी और मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वो किसी भी अगर अपने पेपर के ऊपर या अपनी पर्सनल डायरी में अगर लिख देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं कुछ भी कि लास्ट विल के तौर पे कि मेरी प्रॉपर्टीज़, जैसे फॉर एन एग्जांपल वो लिखते हैं कि ABC ट्रस्ट को जानी चाहिए और माय प्रॉपर्टीज़ मूवेबल इमूवेबल, दिस इज़ माय लास्ट विल, तो ऐसी दो चार लाइनें भी लिखी हुई और बाद में जैसे ही पता चलता है कि ऐसे कोई डायरी खोलता है देखते हैं कि फलानी डेट डाल दी उन्होंने, साइन कर दिए कि ये उनकी इस समय की राइटिंग है, क्योंकि राइटिंग एक्सपर्ट तो यहाँ तक भी बता देते हैं कि ये राइटिंग कितनी पुरानी है जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ऐसी विल भी मान्यता रखती है
जी।
ऐसी विल के मुताबिक भी प्रॉपर्टी की जो है,
जो भी कुछ वो डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल वैलिड होगा।
हाँ, टेस्टामेंट्री डिवोल्यूशन हो सकती है
जी, बिल्कुल। तो एक्सीडेंट के बारे में तो हमने जाना है कुछ खास एडवोकेट मोहित भंडारी जी से, लेकिन आगे भी जानेंगे बहुत कुछ। वसीयत के बारे में नसीहत दे रहे हैं एडवोकेट मोहित भंडारी जी। मोहित जी, बहुत सी बातें हम आपसे जान रहे हैं। फिलहाल आपने एक्सीडेंट के केस में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वहां पर उसके पास कोई विल नहीं होती है, उसने अभी तक कोई विल नहीं बनाई है, तो फिर क्या करना चाहिए उसे, या अगर वो प्लेन पेज पे लिख भी देता है कुछ ऐसा तो वो वैलिड हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास ना तो पेज है ना ही उसने विल बनाई है, डेजर्ट में है सपोज, या फिर किसी ऐसी जगह पर है जहां बहुत मिट्टी है और वहां पर उसको पता चलता है कि उसकी जो जिंदगी है वो कुछ ही पलों की है और उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी उसकी सही हाथों में जाए इसके लिए वो डेजर्ट पर या फिर किसी मिट्टी या फिर ऐसी जगह पर कुछ लिख देता है, सपोज कुछ चौक से लिख दिया या पत्थर से कुछ लिख दिया, तो क्या वो भी वैलिड होगा?
अगेन दीक्षा जी, आपने बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। मान लीजिए वास्तव में कोई डेजर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और अकेले हैं, अपने पूरे कारवां से वो अलग पड़ गए हैं और उनको पानी नहीं नसीब हो रहा और वो बहुत रिच आदमी हैं और उन्हें ये मालूम है कि मैं प्यास की वजह से अब मेरी जान जाने वाली है और लाइकलीहुड नहीं है कि इमीडिएटली मेरे को कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा या कोई मेरी हेल्प करेगा, वो चिल्लाते भी हैं और कोई देखते हैं कि कोई चिल्ला चिल्ला के भी थक चुके हैं, तो ऐसे में अगर वो उन्हें लगता है कि अब मेरी जान जाने वाली है प्यास की वजह से, तो अगर वो रेत के ऊपर भी किसी भी स्टिक को या किसी भी चीज़ से या अपनी उंगली से भी अगर वो अपनी कोई वसीयत लिख देते हैं और उस वसीयत के आसपास ही अपने प्राण त्याग देते हैं और बाद में आ जाता है उनको लोकेट करते करते लोग और वो देखते हैं कि इन्होंने ज़मीन पे कुछ लिखा भी हुआ है और उसको अगर वो दोबारा से अच्छी तरह से कैमरे से या किसी चीज़ से रीटेक कर लेते हैं, तो ऐसी उनकी वसीयत भी पूरी तरह से मान्य होगी, होनी ही चाहिए।
यानी जो भी उन्होंने आखिरी पलों में लिखा है, चाहे वो रेत पे लिखा हो या जमीन पे लिखा हो, वो बिल्कुल वैलिड होता है।
हाँ जी।
मोहित जी, अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, चलने में असमर्थ हैं और कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वसीयत क्या घर पे रहकर ही बनवाई जा सकती है?
दीक्षा जी, आज आप बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ रही हैं
जी।
दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा प्रोसीजर है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ विल्स होते हैं, नॉर्मली तहसीलदार होते हैं जहाँ विल की रजिस्ट्रेशन होती है, तो वहाँ पर वो किसी को भी भेजकर एक थोड़ी सी एडिशनल फीस देनी होती है, तो वो एडिशनल फीस डिपॉजिट कर दी जाएगी और उसके पश्चात तहसीलदार महोदय या रजिस्ट्रार ऑफ विल जिन्हें कहें हम, वो उनके घर पे आ जाएंगे और उनके वो बिल्कुल सिरहाने पे बैठ के विल वहाँ उनसे लेकर और वो उनके डोर स्टेप पे जाके, उनके घर पे जाके जो है विल की रजिस्ट्रेशन की जा सकती है।
यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप चल नहीं सकते या जा नहीं सकते तो आप अपने घर में विल नहीं बनवा सकते हैं। आप घर पे आराम से बनवा सकते हैं। विल जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट तक चल के जाना पड़े।
हाँ जी बिल्कुल बनवा सकते।
बिल्कुल। तो विल के बारे में बहुत सी और भी बातें जानेंगे, ओरल विल के बारे में जानेंगे कुछ खास, और साथ ही जानेंगे कि अगर विल में करने हो बदलाव तो क्या वो पॉसिबल है। मोहित जी, अभी तो आपने बहुत सी बातें बताई हैं विल के बारे में कि अगर किसी कारण से ना लिखी हो और जीवन के आखिरी समय में अगर कुछ लिख दिया जाए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में तो वो भी वैलिड हो जाता है। अगर आप कोर्ट तक नहीं जा सकते तो घर में भी विल बनवा सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कुछ सिचुएशंस की जहां पर विल होती ही नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि हमने सिर्फ मुंह जबानी ये बात बोली है, ओरल विल जिसको कह सकते हैं आप, तो क्या वो भी वैलिड हो सकती है या वो तो बिल्कुल वैलिड नहीं होगी?
नहीं, लेकिन एग्रीमेंट्स तो ओरल एग्रीमेंट्स का तो मान्यता है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के मुताबिक उन्हें प्रूव किया जा सकता है। लेकिन ओरल विल का कोई प्रोसीजर नहीं है। ओरल विल अगर इसकी मान्यता दे दे तो हर व्यक्ति जो भी उनके सक्सेसर्स हैं सबको अपने अपनी ही इंटरप्रिटेशन के मुताबिक उनकी लैंग्वेज सुनाई पड़ेगी और वो ज़्यादा उसमें डिस्प्यूटेड सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए ओरल विल की कोई मान्यता नहीं है और ना ही होनी चाहिए।
जी, एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आया जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर विल नहीं बनाई है और किसी व्यक्ति की हो जाती है लेकिन उसके हाथों से लिखी हुई कोई चिट्ठी कभी मिलती है जिसमें थोड़ा बहुत जिक्र होता है प्रॉपर्टी का, तो क्या वो भी वैलिड हो जाती है?
देखिए, जैसा कि पहले कहा गया है, सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे लिखते हैं कि जो उससे इंटेंशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उससे अगर ये इंटेंशन झलकती है कि ये मरते समय में इन्होंने ये अपनी वेल इंटेंशनड वे में अपनी प्रॉपर्टी के बारे में ये इन्होंने विल ही लिखी है, चाहे उसके ऊपर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि हमने हेड नोट विल का दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर चिट्ठी के बारे में ऐसी कर्सरी प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है और हम उसे विल की पार्लेंस में, या ये नहीं कह सकते कि ये चिट्ठी लिखते समय उनकी इंटेंशन एक वसीयत करने की थी, फिर तो लेटर को हम विल के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी को अपने फ्रेंड को कन्फाइड कर रहे हैं और चिट्ठी में वो बकायदा अपनी विल ही रिप्रोड्यूस पूरी तरह से करके लिख देते हैं
जी जी।
और कहते हैं कि यही मेरी वसीयत है और यही आप, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप इसको वसीयत के तौर पे आगे कीजिए, रेफर कीजिए, उनसे ये निवेदन करते हैं, तो ऐसे में जो लेटर भी है वो भी विल का काम कर सकती है।
बिल्कुल,
इंटेंशन इम्पोर्टेंट है।
जी बिल्कुल, इंटेंशन सही होनी चाहिए और उस चिट्ठी के पीछे क्या इंटेंशन है ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हाँ जी।
बहुत से सवाल और भी हैं हमारे मन में जो हम जानेंगे एडवोकेट मोहित भंडारी जी से, वसीयत के बारे में नसीहत दे रहे हैं। और अगर आपके मन में भी सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, नंबर है बहुत आसान 8010781078। मोहित जी, अब बात करते हैं विल में बदलाव के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि एक विल बनवा दी या फिर अब उस विल में आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस कराने चाहिए या फिर आपने सब कुछ सोच समझ के दोबारा एक और विल बनवा दी, तो क्या इन दोनों विल में से कौन सी वाली वैलिड रहेगी और अगर बदलाव कराना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है?
बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि जो विल प्रिवेल करेगी वो लास्ट विल ही प्रिवेल करती है
जी।
प्रीवियस जो विल्स होती हैं वो एक्लिप्स हो जाती हैं, वो अमान्य हो जाती हैं। लास्ट विल ही प्रिवेल करती है। और चेंज्ड सर्कमस्टांसिस में जो भी विल के एग्जीक्यूटर हैं वो बिल्कुल उन सर्कमस्टांसिस का व्याख्यान करते हुए कि ये सर्कमस्टांसिस में चेंजेस हो गई हैं और इसीलिए मैं अपनी पहली जो वसीयत है उस वसीयत को चेंज करना चाहता हूँ, आज के बाद वो वसीयत ना मानी जाए और मैं ये दूसरी वसीयत कर रहा हूँ। इसी तरीके से दोबारा अगर सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं वो तीसरी बार भी वसीयत कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या वसीयत में अमेंडमेंट हो सकती है, वो ऐसा भी कर सकते हैं, उसे कॉडिसिल भी बोलते हैं लीगल पार्लेंस में। और अमेंडमेंट ऑफ द विल ऐसे सर्कमस्टांसिस में होती है, जैसे मान लीजिए जब उन्होंने वसीयत की तो उनके दो घर थे, बाद में उन्होंने एक घर और खरीद लिया या और कुछ उनकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ बैंक अकाउंट्स में कुछ ऐसा पैसा आ गया, तो वो वसीयत को पूरा तो चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि पहले वेल रिटन वेल ड्राफ्टेड विल है, तो वो उसमें कोई भी पैराग्राफ्स एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ अल्टरेशन भी कर सकते हैं
जी, यानी
लेकिन अगर आप मूल भूत चेंजेस ही करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहते हैं, तो फिर ये एडवाइजेबल है कि आप अमेंडमेंट ना करके दोबारा से ही विल बना दें, तो वो ज्यादा उचित,
वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और आप मेरे यानी दीक्षा के साथ। फिलहाल बहुत सी बातें चल रही हैं विल यानी वसीयत के बारे में, और इन बातों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वसीयत के बारे में नसीहत देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है एडवोकेट मोहित भंडारी जी। मोहित जी, बहुत सी बातें आपने बताई हैं, विल में बदलाव करने हो या फिर विल किसी कंडीशन में अगर कोर्ट जाके ना बनवाई जाए, घर पे बनवानी हो, तो ऐसी सिचुएशन के बारे में आपने हमें विस्तार से बताया है। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि विल जो हम बनवाते हैं उसकी मान्यता के लिए आखिर क्या करना होता है, या जो हमने विल बनवा ली वो एकदम ठीक है, वो वैलिड है, या फिर उसकी मान्यता के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है?
देखिए, वसीयत अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी ज़्यादा अथेंटिसिटी मानी जाती है
जी,
तो लेकिन कुछ मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, ये जो बिगर सिटीज़ हैं, इनमें प्रोबेट असेंशियल होती है इन टाउन्स में, प्रेजिडेंसी टाउन्स में, कि प्रोबेट के मायने हैं जुडिशियल अथेंटिकेशन और जुडिशियल कन्फर्मेशन ऑफ द विल, कि आप पहले कोर्ट में जो भी उस विल के बेनिफिशरीज हैं उनको अदालत में जाना होगा, विल की कॉपी साथ में लगा के वो प्रोबेट पिटीशन फाइल करेंगे, और प्रोबेट पिटीशन की जुरिस्ट्रिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी होती है और बहुत सारे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी होती है, तो वो प्रोबेट पिटीशन में मतलब विल लगाएंगे, और फिर उसका एक पब्लिक नोटिस होता है जनरल पब्लिक को कि किसी को ये विल को हम जुडिशियल कंफर्मेशन, एक जुडिशियल स्टैंप लगाने जा रहे हैं, अगर जनरल पब्लिक में से किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो इस पे प्रेस्क्राइब टाइम में ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं, और उस विल में जिन बेनिफिशरीज को सक्सेसर्स को बेनिफिट नहीं दिया गया उनको भी पार्टी बनाना होता है सक्सेसर्स की लिस्ट, क्योंकि वो इमीडिएटली अफेक्टेड पार्टीज हैं, तो वो भी आकर उसके बारे में ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। तो ये प्रोबेट प्रोसीजर है, लेकिन ये सारे टाउन्स में जैसे हरियाणा में अर्लियर कोई ऐसा प्रोसीजर देखने में नहीं आता, तो हर एक स्टेट्स में और जो नॉर्मल टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, उनमें इस तरह का प्रोबेट का प्रोसीजर नहीं भी है। कन्फर्म जो विल अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड विल के बेसिस पे म्यूनिसपैलिटीज़ और जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड जो भी अथॉरिटीज़ मेंटेन करती हैं, वो रजिस्टर्ड विल के बेसिस के ऊपर ऑनरशिप को चेंज कर भी देते हैं, बेनिफिशरीज के नाम पे प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन अगर उन्हें विल किसी तरह से डाउटफुल लगती है या उनके पास भी कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप इसके बेसिस पे मत कीजिए, तो वो ऐसे में फिर जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको यही एडवाइस करना ही उचित होगा, वो करते भी ऐसा ही हैं, कि आप अदालत में जाइए, माननीय अदालत में जाके आप वहाँ से डेक्लेरेशन लीजिए, डेक्लेरेशन का फिर प्रोसीजर होता है कि वो विल की कॉपी लगा के ऑनरेबल कोर्ट से डिक्लेरेशन सीख कर सकते हैं कि ये विल बिल्कुल वैलिड है, सही सरकमस्टांसिस में हम बेनिफिशरीज के फेवर में ही जो भी जो एग्जीक्यूटर है उनके इंटेंशन हमें ही ये प्रॉपर्टीज देने की थी, इसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी
नहीं है। जी जी,
तो इस तरह से जुडिशियल कंफर्मेशन ऑफ द विल बाय डिक्लेरेशन भी होता है और बाय प्रोबेट भी होता है।
जी बिल्कुल, तो बहुत सी बातें आपने बताई हैं मोहित जी आज स्टूडियो में, एक बार फिर से आपने विल के बारे में बहुत कुछ बताया है, वसीयत के बारे में नसीहत दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।
तो वसीयत की नसीहत तो आप ले चुके, तो फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का। कहीं मत जाइए आप, क्योंकि बहुत सी बातें करनी अभी बाकी हैं अलग अलग फील्ड्स और एंटरटेनमेंट के बारे में हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ 24 घंटे सातों दिन। फील गुड, फील लाइव।